ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। हरे कृष्णा। तो आज हम चर्चा करेंगे भगवद गीता से। भगवद गीता यथारूप अध्याय 3, अध्याय का शीर्षक है कर्म योगा, श्लोक संख्या 30। तो मैं पढ़ता हूँ, आप ध्यान से सुनिए। मयि सर्वाणि कर्माणि संन्यासाध्यात्म चेतसः निराशिर निर्ममो भूत्वा युद्धस्व विगत ज्वरः। अनुवाद और तात्पर्य। इस डिवाइन ग्रेस एसी भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद द्वारा श्रील प्रभुपाद के। तो अनुवाद इस प्रकार से है, अतः हे अर्जुन, अपने सारे कार्यों को मुझ में समर्पित करके मेरे पूर्ण ज्ञान से युक्त होकर लाभ की आकांक्षा से रहित, स्वामित्व के किसी दावे के बिना तथा आलस्य से रहित होकर युद्ध करो। तात्पर्य, यह श्लोक भगवद गीता के प्रयोजन को स्पष्टतया इंगित करने वाला है। प्रयोजन का मतलब है पर्पस या उद्देश्य, गोल। भगवान की शिक्षा है कि स्वधर्म पालन के लिए सैन्य अनुशासन के सदृश पूर्णतया कृष्ण भावना भावित होना आवश्यक है। ऐसे आदेश से कुछ कठिनाई उपस्थित हो सकती है, फिर भी कृष्ण के आश्रित होकर स्वधर्म का पालन करना ही चाहिए, क्योंकि ये जीव की स्वाभाविक स्थिति है। जीव भगवान के सहयोग के बिना सुखी नहीं हो सकता, क्योंकि जीव की नित्य स्वाभाविक स्थिति ऐसी है कि भगवान की इच्छाओं के अधीन रहा जाए। अतः श्री कृष्ण ने अर्जुन को युद्ध करने का इस तरह आदेश दिया मानो भगवान उसके सेना नायक हो। परमेश्वर की इच्छा के लिए मनुष्य को सर्वस्व की बलि करनी होती है और साथ ही स्वामित्व जताए बिना स्वधर्म का पालन करना होता है। अर्जुन को भगवान के आदेश का मात्र पालन करना था। परमेश्वर समस्त आत्माओं के आत्मा है, अतः जो पूर्णतया परमेश्वर पर आश्रित रहता है, या दूसरे शब्दों में जो पूर्णतया कृष्ण भावना भावित है, वह आध्यात्मिक चेतस कहलाता है। निराशिर का अर्थ है स्वामी के आदेशानुसार कार्य करना किंतु फल की आशा न करना। कोषाध्यक्ष, कोषाध्यक्ष मीन्स कैशियर, अपने स्वामी के लिए लाखों रुपए गिन सकता है किंतु इसमें से वह अपने लिए एक पैसा भी नहीं चाहता। इसी प्रकार मनुष्य को यह समझना चाहिए कि संसार में किसी व्यक्ति का कुछ भी नहीं है, सारी वस्तुएं परमेश्वर की हैं। मैं अर्थात मुझमें का वास्तविक तात्पर्य यही है। और जब मनुष्य इस प्रकार से कृष्ण भावनामृत में कार्य करता है तो वह किसी वस्तु पर अपने स्वामित्व का दावा नहीं करता। एक कृष्ण ये भावनामृत निर्मम अर्थात मेरा कुछ नहीं है कहलाता है। यदि ऐसे कठोर आदेश को जो शारीरिक संबंध में तथाकथित बंधुत्व भावना से रहित है पूरा करने में कोई झिझक हो तो उसे कर देना चाहिए। इस प्रकार मनुष्य विगत ज्वर अर्थात ज्वर या आलस्य से रहित हो सकता है। अपने गुण तथा स्थिति के अनुसार प्रत्येक व्यक्ति को विशेष प्रकार का कार्य करना होता है और ऐसे कर्तव्यों का पालन कृष्ण भावना भावित होकर किया जा सकता है। इससे मुक्ति का मार्ग प्रशस्त हो जाएगा। ओम अज्ञान तिमिरांधस्य ज्ञानांजन शलाकया चक्षुर्मीलितं येना तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। हे कृष्णा करुणा सिन्धो दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरि प्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्त वृंद हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा। मयि सर्वाणि कर्माणि संन्यास अध्यात्म चेतसः। तो प्रभुपाद अपने प्रवचनों में कहा करते थे कि ये जो भौतिक जगत है यहां हर एक व्यक्ति बीमार है कि नहीं। इसलिए चाणक्य पंडित ने कहा कश्च दोषे कुले नास्ति व्याधिना कोन पीड़िता। चाणक्य कई बार लोग सोचते हैं कि चाणक्य पंडित बड़े राजनीतिज्ञ थे, लेकिन चाणक्य पंडित विष्णु के महान भक्त थे। जब वो चाणक्य नीति क्या है, उन्होंने पुराणों से जो शिक्षाएं लेकर उसका संकलन किया है, क्योंकि शास्त्रों में सब प्रकार का ज्ञान सरलता से अवेलेबल है। इसलिए शास्त्रों को कहा जाता है निगम कल्पतरु। कल्पतरु वो वस्तु है, वो पेड़ है, जिसके नीचे बैठने मात्र से आपकी जो भी इच्छा है उसकी पूर्ति होगी। तो इसलिए जितना भी ज्ञान है उसको वेद कहते हैं, या फिर इन सारे ज्ञानों को कहा जाता है एक ऐसा ट्री है निगम कल्पतरु। निगम मीन्स नॉलेज या शास्त्र। तो उनका एक कल्पतरु है और हर प्रकार का ज्ञान इस भौतिक जगत में एक व्यक्ति को जीवित रहने के लिए और भगवान की ओर जाने के लिए अवेलेबल है। जैसे आयुर्वेद है, धनुर्वेद है। आयुर्वेद आयु हमारी ठीक रहे, हेल्थ, उसके लिए क्या है आयुर्वेद। धनुर्वेद फाइट करना है, धनुष आदि, तो उसके लिए धनुर्वेद है। तो सब प्रकार का ज्ञान हमें शास्त्रों में प्राप्त होता है। तो वैसे ही एक व्यक्ति को अपने रेगुलर लाइफ में किस प्रकार से जीना चाहिए और किस प्रकार से लोगों से संबंध बनाए रखना चाहिए, लोगों से अलग अलग प्रकार के लोगों से कैसे डील करना चाहिए, वो सारी शिक्षाएं इन शास्त्रों में हैं। और उसी में से कुछ शिक्षाएं चाणक्य ने क्या की, एकत्र की, कलेक्ट की, संकलित की और उसने उन्होंने चाणक्य नीति लिखी। तो उसके सबसे पहले एक श्लोक में वो कहते हैं का चिंता मम जीवने यदि हरि विश्वंबर गीयते। वो कहते हैं कि संसार में हर एक व्यक्ति चिंता करता रहता है, उसको अधिक चिंता किसकी है, अपने पारिवारिक जनों की है, बच्चों की है, पत्नी की है, घर की है, अपने घर के अंदर जो वस्तुएं हैं उनकी है। रात को नींद भी नहीं आती है क्योंकि इतना अधिक चिंता उसके पास है। तो इसी कारण से व्यक्ति जीवित रहते हुए भी अंदर क्या होता है, जलता रहता है। हाँ, चिंता क्या करती है, हमें जलाती है। इसलिए कहते हैं चिंता चिंता से भी अधिक क्या है, भयानक है। मृत्यु के बाद एक क्षण में, कुछ मिनटों में चिता जला के हमें अलग कर देती है, लेकिन चिंता हर क्षण हर रोज पूरा जीवन जलाती रहती है। तो ऐसी चिंता, और हम किस वस्तु के लिए चिंतित हैं, भौतिक जगत की वस्तुओं को प्राप्त करने के लिए और इस भौतिक जगत में सुखमय जीवन यापन करने के लिए चिंतित है। दो प्रकार से व्यक्ति चिंतित रहता है। एक तो है उसके पास जो वस्तुएं है उसकी रक्षा करने के लिए चिंतित रहता है और वस्तु प्राप्त करने के लिए आशा रखता है, वो आएगी तो उसको कैसे मैं रखूंगा सुरक्षित, उसके लिए चिंता करता रहता है। इसलिए केवल जलता है व्यक्ति अंदर से। तो इसी कारण से चाणक्य पंडित कहते हैं कि मैं ऐसे मूर्ख लोगों के समान नहीं हूं, जो व्यर्थ की चिंता करते हैं अपने इस भौतिक जीवन में। जनरली हमें चिंता रहती है रोटी कपड़ा मकान, तीन चीजों से परे हमारा बुद्धि सोच ही नहीं सकता। व्यक्ति सुबह उठते ही केवल इसी से चिंतित रहता है कि कैसे मुझे रोटी कपड़ा मकान अच्छे से मिले, बल्कि हम संतुष्ट नहीं है जो हमें प्राप्त हुआ है भगवान की कृपा से। सुखी व्यक्ति कौन है? इस संसार में दो ही व्यक्ति सुखी हैं, एक तो जो पागल व्यक्ति है और दूसरा जो जिसका मन कृष्ण में लगा है वो सुखी है। पागल व्यक्ति को इस संसार का कुछ लेना देना नहीं है, आसपास क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है वो पागल ही है, इसलिए उसे कुछ चिंता और टेंशन आदि स्ट्रेस ये शब्द उसने कभी सुने नहीं है। और जिसका मन कृष्ण में निरंतर लगा हुआ है, कृष्ण के नाम रूप गुण लीलाओं में जो सदैव मग्न रहता है, वो भी अत्यधिक सुख का अनुभव करता है, वो भी जगत का व्यक्ति नहीं है। इसलिए हम देखते हैं कि जगत में हर एक समय में हम संतुष्ट नहीं हैं, बल्कि हम हमेशा दूसरे को देखते हैं, हाँ, और चीजें प्राप्त करने की इच्छा रखते हैं। तो व्यक्ति कोई संसार में सारा जगत भी उसे मिल जाए तो भी वह संतुष्ट नहीं हो सकता। इसलिए कहते हैं दो प्रकार की इच्छा बहुत पावरफुल है इस संसार में, एक है जीवित आशा और दूसरी है धनाशा। कौन सी दो आशाएं हैं? जीवित रहने की आशा और दूसरी है धन प्राप्ति की आशा। ये दो आशा या डिजायर्स बहुत पावरफुल है, उसके लिए व्यक्ति मर रहा है, दिन रात कष्ट कर रहा है, केवल मुझे इस संसार में जीवित रहना है। जीवित रहने के लिए व्यक्ति क्या क्या नहीं करता और जीवित रहने के लिए क्या चाहता है? धन की कामना करता है। इसलिए कहते हैं ना, सबसे बड़ा क्या है इस संसार में? रुपया है। ना बाप बड़ा है ना कुछ और बड़ा है, कौन बड़ा है? रुपया बड़ा है। तो व्यक्ति धन की आशा इतनी है कि मृत्यु आ जाए उसकी तो भी धन दिखाई दे दूर तो उसके लिए दौड़ पड़ेगा। हाँ, तो धन की आशा और जीवित रहने की आशा, ये दो आशा हमारे जीवन में बहुत अधिक है। तो कहने का तात्पर्य है कि हम हमेशा वो व्यक्ति कभी भी सुख और शांति अपने जीवन में अनुभव नहीं कर सकता जो हमेशा ऊपर देखता है। ऊपर मीन्स, अरे मेरे पास अभी फोर व्हीलर है मारुति 800 और उसके पास तो बड़ी कार है लंबी वाली। जब तक ऊपर देखते रहेगा तब तक जीवन में हमेशा दुखी रहेगा, बल्कि हम देखें कि कृष्ण ने इतनी मेरे ऊपर कृपा की है कि मेरे पास रहने के लिए है, दो समय का खाने के लिए है और थोड़ा समय है जिसमें मैं भजन कर सकता हूं। हम देखे फुटपाथ में लोग जिनके पास ना वस्त्र है, ना रहने के लिए कुछ स्थान है, ना भोजन करने के लिए कुछ है, तो वो व्यक्ति कृष्ण की ओर आगे बढ़ सकता है जो अपने जीवन में क्या देखता है? कृष्ण को, कृष्ण का हाथ देखता है और कृष्ण ने दिए हुए चीजों के प्रति ग्रेटफुल होता है, कृतज्ञ होता है। तभी हम संतुष्ट रह सकते हैं और सुखी रह सकते हैं। इसलिए भगवान जब वामन देव के रूप में अवतरित हुए हैं, एक छोटे से बटु ब्रह्मचारी थे, ब्राह्मण आदित्य के पुत्र के रूप में, इंद्र के भाई के रूप में स्वर्ग में प्रकट हुए थे भगवान वामन। और जब इंद्र का जो राज्य है आसुरों ने ले लिया था, बलि महाराज आदि ने उनको हरा कर, तो बलि महाराज यज्ञ कर रहे थे और जहां वो यज्ञ हो रहा था उस स्थान में ये बटू छोटा सा ब्राह्मण गया भगवान वामन देव, और वहां यज्ञ हो रहा है, यज्ञ की पूर्ति तभी है जब क्या दिया जाए? दान दिया जाए, कोई भी यज्ञ जो है। तो जब ये ब्राह्मण ब्रह्मचारी आया वहां भगवान वामन देव के रूप में, उन्होंने कहा क्या चाहिए आपको, मांगो मुझसे। तो उन्होंने कहा मुझे तो क्या चाहिए, तीन पग भूमि, जितनी एक व्यक्ति को सोने के लिए जितना जगह है उतना ही दीजिए। उन्होंने कहा आप तो मेरा अपमान कर रहे हो, आप किसी बड़े धनवान व्यक्ति के पास जाओ और उसको कहो जिसके पास अरबों रुपए हैं कि मुझे ना एक मुट्ठी भर चावल चाहिए आपसे, तो वो लज्जित हो जाएगा, वो कहेगा आप मेरा अपमान कर रहे हो। वैसे ही हालत बलि महाराज की हुई। बलि महाराज ने कहा अरे तुम तो छोटे बालक हो, कुछ चाहिए तो मुझसे मांगो ना, धन चाहिए, पद चाहिए, संसार का भोग चाहिए। उन्होंने कहा कि संसार ये जो लालची व्यक्ति है, ग्रेडी व्यक्ति है, उसको इस संसार का सारा धन भी दिया जाए तभी भी उसका लालच पूर्ति नहीं होगा, वो संतुष्ट कभी नहीं होगा। तो जब तक व्यक्ति संतुष्ट नहीं है तब तक उसके जीवन में शांति नाम की चीज नहीं आ सकती। मैं भी पत्नी आ सकती है जिसका नाम शांति हो सकता है, हाँ, लेकिन उसके जीवन से शांति गायब हो जाएगी, अशांति आएगी। तो संतुष्ट हुए बिना शांति नहीं हो सकती जीवन में, और इसलिए कृष्ण कहते गीता में अशांतश्च कुतः सुखम्। जो अशांत व्यक्ति है उसके पास सुख नहीं है। तो इसी कारण से हम सदैव चिंतित रहते हैं, दो चीजों की सदैव आशा करते रहते हैं। कौन सी दो चीजें हैं? एक है जीवित रहने की आशा, कौन मरना चाहता है। हाँ, हम समय सुबह उठते ही प्लान बनाते हैं जीवित कैसे रहना है, उठते ही आके खुलते ही पैसे की याद आती है, हाँ, धन कैसे कमाना है, कृष्ण वगैरह की याद नहीं आती। उठते आके खुलते ऑफिस का याद आता है, पैसे का याद आता है, धन चाहिए। तो मतलब इसलिए शास्त्र कहते हैं हर एक जीव के अंदर ये दो आशा इतनी ठूस ठूस के भरी है कि उससे उसको निकलना बहुत कठिन है। एक आशा क्या है? जीवित रहना है मुझे। क्यों हमारे अंदर ये डिजायर है जीवित रहने की? क्योंकि हमारे लिए नेचुरल है, स्वाभाविक है, क्योंकि हमें शरीर नहीं है, शरीर मृत होने वाला है, लेकिन आत्मा क्या है? सदैव जीवित रहने वाला है। न जायते न म्रियते वा कदाचिन नायं भूत्वा भवितावान भूया अजो नित्य शाश्वतोयं पुराणो न हन्यते हन्यमाने शरीरे। इस शरीर का हनन हो जाएगा लेकिन इस शरीर के अंदर रहने वाला जो आत्मा है वो ना जन्म लेता है ना मरता है। इसी कारण से हमें भी मरने की इच्छा नहीं होती, बोलते बहुत है। जैसे हमें गांव में गए थे तो वहां एक बूढ़ी माता जी थी, वो बहुत वृद्धावस्था हो गई थी, कह रही थी बारंबार, कुछ दिन वहां रुके थे तो बारंबार कहते मृत्यु आ जाए, भगवान कब मुझे उठा ले, ये बूढ़ा अवस्था बूढ़ी अवस्था आ गई है, चला नहीं जा रहा है, अब बहु आदि कोई सेवा नहीं कर रहे, भगवान मुझे क्या कर लो, उठा लो जल्दी। तो हम में से एक भक्त था, वो बहुत बोलने में एक्सपर्ट था, हाँ कुछ होते है ना, उन्होंने कहा माता जी वहां ना इलेक्ट्रिक की वायर जा रही है, जाके उसको पकड़ लो, हाँ जल्दी चली जाओगे। तो चिल्लाने लगी, गुस्सा होने लगी, गालियां देने लगी। तो मतलब हम बोल सकते हैं कि मुझे जल्दी जाना है, हाँ, लेकिन आंतरिक इच्छा नहीं है। आंतरिक इच्छा यह है कि मुझे तो इस संसार में जीवित परमानेंटली रहना है, और जीवित रहने के लिए हम कुछ भी कर सकते हैं। ऐसे नहीं कि अभी पूर्व सारे युगों में यह देखा गया है, द्वापर युग में, हाँ, महाशय कंस थे, जब अपने बहन का रथ हाँक रहे थे विवाह के बाद, तो अचानक उनको आकाशवाणी सुनाई दी। आजकल आकाशवाणी क्या है? FM रेडियोस हैं, नहीं पहले आता था ना, हम स्कूल में थे तो आकाशवाणी दिल्ली केंद्र से हम बोल रहे हैं, तो आज की आकाशवाणी तो बहुत सारी है, लेकिन उस समय जो आकाशवाणी हुई तो इंद्र तो बैठे, इंद्र नहीं कंस आगे रथ चला रहे थे, अपने बहन के लिए प्रेम ऐसा उमड़ उमड़ के बाहर आ रहा था, क्या क्या करूं मैं अपने बहन के लिए, स्वयं हिरत हाँक रहा था। और उसी समय जब आकाशवाणी सुनी, और आकाशवाणी में क्या शब्द सुने, कि जिस बहन का आप रथ हाँक रहे हो उसी के आठवें पुत्र के द्वारा आपका वध होने वाला है, आप मृत्यु को प्राप्त होगे। तो सोचो सुनना कितना पावरफुल है कि नहीं। इसलिए भगवान के पास वापस जाना है तो एक है, सुनते रहो कृष्ण के बारे में, और कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। तो जब कंस ने यह सुना तो कंस सारा प्रेम, सारे रिश्ते, सारे संबंध क्या हो गया, भूल गया। हाँ, ये सारे संबंध इस जगत के किस पर टिके हुए हैं, स्वार्थ के ऊपर। चाहे वो माता पिता हो, पुत्र पिता हो, या फिर पति पत्नी हो, हाँ सबके संबंध क्या है, नौकर या और बॉस हो, सबके संबंध स्वार्थ पर टिके हुए हैं। और स्वार्थ क्या है, मुझे जो अच्छा लगता है वैसे आप करोगे तो मैं आपका मित्र हूं, मैं आपका पति हूं, मैं आपकी पत्नी हूं, मैं आपका पुत्र हूं, अदरवाइज नहीं। हाँ, एक बार एक माँ थी, एक व्यक्ति था जिसके माता पिता थे, तो पिता का अचानक देहांत हो गया, पिता मर गए हैं, तो ये तो बहुत धनाढ्य पुत्र था, और पत्नी अभी अभी विवाह हुआ था, उसने सोचा माँ बूढ़ी है गांव की, उसको कहाँ लेके शहर में जाए, कहाँ रखे उसे, उसको वह वृद्धाश्रम में भेज देते हैं। भेज दिया उसको वृद्धाश्रम में, कई साल बीते तो वृद्धाश्रम से फोन आया कि आपकी माँ अभी मरने वाली है, उसकी कुछ अंतिम इच्छा है, आप मिलने के लिए आ जाओ। तो दौड़ते हुए आता है, कैसे आता है, दौड़ते हुए आता है, और माँ डेथ बेड पर थी, मरने वाले थे। माँ से पूछा, माँ आप तो अभी मरने वाले हो, आपकी क्या अंतिम इच्छा है। पुत्र पूछता है, माँ कहती है देखो मैं तो इस वृद्धाश्रम में रही, यहाँ कोई पंखे नहीं है, फैन नहीं है, मेरे अंदर तो सहन करने की शक्ति है, मैं सहन कर सकती हूँ, तुम फैन लगा दो। उन्होंने कहा सही में फैन नहीं थे, फैन क्यों लगाओ बताओ। कहते हैं तुम्हें आना पड़ेगा यहाँ, हाँ आगे चलकर, और मुझे ये कष्ट सहन नहीं होगा कि अपने पुत्र को क्या हो, कष्ट हो, ये माता का हृदय। तो लेकिन भौतिक संबंध क्या है, इसलिए शास्त्र कहते हैं इस जगत में जो प्रेम है ना वो केवल ऊपर ही है। शब्दों से कोई बोल सकता है कि मैं आपसे बहुत प्रेम करता हूं, इतना प्रेम करता हूं कि आकाश के तारे और चंद्रमा को भी आपके हाथों में लाकर दे सकता हूं। हाँ, तो ये कहां का प्रेम है, केवल ओठों में, इसको कहते हैं लिप सर्विस। कौन सी सर्विस, ओठों से की जाने वाली सेवा, अंदर एक कुछ भाव नहीं है, अंदर एक आसुर भोग करने की तीव्र लालसा है, इच्छा है। तो ये तो भौतिक प्रेम नाम की, इस जगत में प्रेम नाम की वस्तु नहीं है, प्रेम इस संसार में देखा जाता है तो शास्त्र कहते हैं कि थोड़ा सा अंश दिखता है बस। माँ अपने पुत्र की सेवा करके जो प्रेम प्रदर्शित करती है उसमें, और उसमें भी आजकल प्रेम रहा नहीं, माता पिता भी सोचते हैं बच्चों को इसलिए पढ़ाना है कि बुढ़ापे के वो हमारे वो बनेंगे, बुढ़ापे में काम आएंगे, इसमें कोई अनन्य प्रेम की भावना नहीं है, इसमें भी क्या है, स्वार्थ है। जब हम स्वार्थ प्रेरित कुछ कार्य करते हैं, कुछ अभिलाषा रखते हैं रिटर्न में, तो उससे हमें कष्ट मिलता है। तो इसलिए शास्त्र कहते हैं कि हम सब लोग जीवित रहना चाहते हैं, हाँ इस संसार के ऐसे ही संबंध है, हाँ स्वार्थमय संबंध है। एक व्यक्ति की नई नई शादी हुई, उसके बेचारे पिता बहुत वृद्ध थे, और जब भी प्रसाद भोजन करने के लिए डाइनिंग टेबल में बैठते थे तो पिताजी जोर जोर से खांसते रहे। वैसे ही अभी नया नया शादी हुआ तो दो चार कमरे थे उनके घर में, पिताजी हमेशा खांसते रहते थे, रात्रि भर भी खांसते रहते। तो पत्नी कहती है तुम्हारा जो बाप है, तुम्हारा जो पिता है, पूरी रात खांसता रहता है, हाँ मुझे नींद नहीं आती, इसका कुछ सॉल्यूशन ढूंढो। किसने कहा, नहीं नहीं विवाहिता पत्नी ने कहा, अभी ये जो पतिदेव थे वो तो पूरे दास दासानुदास। जब एक दिन डाइनिंग टेबल में भोजन लेने के लिए बैठ गए तो वहां इतने खांसने लगे, पत्नी को आया गुस्सा, सारे बर्तन वहां तोड़ मरोड़ दिए, और उन्होंने कहा कल या तो मैं रहूंगे या तो पिता रहेंगे। जैसे प्रभुपाद अपने गृहस्थ आश्रम में थे तो उनकी पत्नी तो बहुत चाय पीती थी, प्रभुपाद ने भगवत गीता का वो लिख दिया अनुवाद, और कहा चले गए तो उनकी पत्नी ने उनकी भागवतम भगवत गीता ये सारा जो कागज था ये रद्दी वाले को बेचा और उससे बिस्किट्स खरीदे, चाय खरीदे। प्रभुपाद को बहुत गुस्सा आया कि अभी पानी सर के ऊपर जा रहा है, गृहस्थ आश्रम का उद्देश्य क्या है, गृहस्थ आश्रम एक रथ है और पति पत्नी उसके दो पहिए हैं, और ये रथ कहां जा रहा है, वैकुंठ जा रहा है, वैकुंठ। अभी एक पहिया खराब हो जाए, टूट जाए, पहुंचेगा नहीं। तो प्रभुपाद ने कहा बहुत सहन किया, अभी पानी सर के ऊपर से जा रहा है। तो अपनी पत्नी को पूछा बताओ तुम्हें मैं चाहिए या चाय चाहिए, टी और मी। तो उसने क्या कहा, टी, चाय चाहिए। प्रभुपाद फिर से अपने घर वापस नहीं गए, वो आखिरी समय था अपनी पत्नी को देखा उन्होंने, उसके बाद घर नहीं गए, उनके बच्चे आए उनको बुलाने नहीं, वो फिर कृष्ण की सेवा में लगे। उन्होंने कहा इस संसारिक लोगों की सेवा करने से क्या लाभ यदि वो कृष्ण की सेवा में नहीं लग पा रहे हैं। तो इसी प्रकार से यहां उस पत्नी ने कहा आपके खांसने वाले पिता चाहिए या मैं चाहिए, कल दोनों में से एक दिखाई देगा। तभी इसको सोचा नया नया विवाह हुआ है, अभी तो संसार बसा है, पत्नी को कैसे त्याग दो, त्यागो तो किसको त्यागो, हाँ बोलिए जोर से बोले किसको, पिता को। हम क्यों इतना हिचकिचाहट क्यों कर रहे हैं, ये क्रूर रियलिटी है इस संसार की, जिसको हम क्या करते हैं हमेशा आंखें बंद करके चलते हैं, आंखें खोल के देखना चाहिए। तो जब पत्नी ने कहा तो दूसरे दिन सुबह उठा, दिवाली गुजरी थी अभी अभी, नया कार खरीदा था उसने, स्विफ्ट डिजायर, कितनी सारी कार से, और उठा पिताजी को बोला पिताजी चलो मंगल आरती के लिए नहीं ब्रह्म मुहूर्त में उठा दिया, बैग पैक करो। पिताजी को लगा रे तुम ये तीर्थ यात्रा करने लेके जा रहा होगा बेटा, सुबह सुबह उठाया बैग पैक करके गाड़ी में बिठाया और बहुत दूर ले गए, जंगल में पहुंचे, रास्ता वहां एंड हो रहा था, वहां जाकर कहा कि बैग लेके उतर जाओ। और क्या आश्चर्य है, क्या लगा होगा पिता को, हाँ पिता उतरते ही जोर जोर से हंसने लगे। अभी पुत्र को लगा कि ये क्या हो गया, मुझे हंसना चाहिए पिता को रोना चाहिए, और ये तो जोर जोर से हंसते जा रहे हैं। पुत्र ने पूछा पिताजी आप क्यों हंस रहे हैं, उन्होंने कहा पिताजी बोले कि मैंने भी अपने पिता को यहां ही छोड़ा था, मतलब हम सब क्या है उस ओर बढ़ रहे हैं, हम सब की गति भी वही है। तो इसी कारण से शास्त्र कहते हैं कि हर एक व्यक्ति इस संसार में जो संबंध बना रहा है वो संबंध किस चीज पर निर्भर है, स्वार्थ के ऊपर, और उस संबंध से हमारी पूर्ति नहीं होगी। कहते ना हमारी मांगे क्या है, हमारी मांगे पूरी करो, उसके आगे क्या है, तो मतलब डिमांड्स। हम कहते हैं संबंध तभी तक अच्छा है किसी के साथ आपके, जब तक वो व्यक्ति आपके डिमांड्स को क्या करता है, पूरा करता है, अदरवाइज कोई किसी से संबंध रखने के लिए तैयार नहीं है। इसलिए भागवतम कहता है जब तक वृक्ष के ऊपर फल है तब तक पंछी वहां बैठे रहते हैं, जब तक गुरु से ज्ञान लेता है सीखना होता है तब तक उनके आसपास हम घूमते हैं, अदरवाइज उसके बाद हम उन्हें पूछते नहीं है, और तब तक सारे मित्र आपके आसपास रहते हैं आपकी प्रशंसा करते हैं जब तक आपके पास क्या है, धन है। जैसे धन खत्म सारे मित्र भी भूल जाते हैं, तो ये संबंध सारे संबंध केवल स्वार्थ पर टिके हैं। और ऐसे स्थिति में व्यक्ति जीवित रहना चाहता है। तो ये कंस जो था वो भी सारे संबंध भूल गया, देवकी को भूल गया, वसुदेव को भूल गया, अभी अभी उनकी बहन जिसके हाथ में क्या कहते मेहंदी या पीला हल्दी से लगे हुए थे, तो लेकिन कुछ उसे समझ में नहीं आया। अपनी रक्षा के लिए, मृत्यु से बचने के लिए क्या किया, उसने तलवार निकाली और अपने नवयुवता जो सिस्टर थी उसके बाल पकड़े और उसका गला काटने के लिए तैयार हो गए, भूल गया। ऐसी स्थिति है, वैसे ही हिरण्यकश्यपु अपने पुत्र को मारने के लिए क्या तैयार हो गए। तो कहने का तात्पर्य है कि हम इस जगत में हमेशा जीवित रहना चाहते हैं, जीवित रहने की सदैव क्या करते हैं, आशा में लगे रहते हैं। इसलिए शास्त्र भागवतम कहता है जिर्यन्ति जिर्यतः केशा दंता जिर्यन्ति जिर्यतः धनाशा जीवित आशा च जिर्यतोपि न जिर्यति। वो कहते हैं कि धन की आशा और जीवित रहने की आशा, व्यक्ति बूढ़ा भी हो जाता है फिर भी ये दो आशा हृदय से निकलती नहीं है। इसी कारण से शास्त्र कहते हैं कि हमें ये जो भौतिक दो आशाएं हैं उनसे मुक्त होने का प्रयास करना चाहिए। आशा और एक आशा क्या है, धन क्यों चाहिए हमें, धन इसलिए चाहिए क्योंकि धन से क्या मिलता है, सुकून सुख मिलता है, आनंद मिलता है, इसी कारण से हम धन चाहते हैं। इसलिए हर एक व्यक्ति के जीवन में तीन इच्छाएं होती हैं, पुत्र इच्छा और धन की इच्छा और मान सम्मान प्राप्त करने की इच्छा, इसी के लिए वो जीवन गंवाता रहता है। तो शास्त्र हमें सावधान करते हैं कि हर एक व्यक्ति सुख की कामना करता है, धन की कामना करता है, जिस धन के द्वारा वो सुखी होना चाहता है। लेकिन यहां जो चाणक्य पंडित है वो कहते हैं का चिंता मम जीवने, मेरे जीवन में कोई चिंता नहीं है। तो कहेंगे ऐसा कौन व्यक्ति है जिसके जीवन में चिंता ही नहीं है, कोई भी नहीं मिलेगा, आपके जो मित्र हैं संबंधी हैं सबके पास कुछ ना कुछ चिंताएं हैं। तो कहते हैं क्यों मैं चिंता नहीं करता हूं और मेरे जीवन में टेंशन क्यों नहीं है, क्योंकि एक चीज मैंने सीख ली है। क्या चीज मैंने सीखी है, वो कहते हैं का चिंता मम जीवने यदि हरि विश्वंबर गीयते, ये बहुत महत्वपूर्ण है। वो कहते हैं कि जनरली व्यक्ति चिंता करता है मैं मेरे लिए खाने के लिए कैसे मिलेगा, रहने के लिए कैसे मिलेगा, मेरा गुजारा कैसे होगा, बुढ़ापा में मेरा सहारा कौन होगा, इसलिए चिंता करता है। वो कहते देखो कृष्ण कितने कृपालु हैं, कृष्ण जो भी जीव इस जगत में जन्म लेता है उसका कोटा कृष्ण ने रखा हुआ है, उसके पास रहने के लिए खाने के लिए धन ये फिक्स है। आपके जीवन में धन भौतिक सुख ये कितना आने वाला है वो फिक्स है, उससे ज्यादा आप इकट्ठा नहीं कर सकते। तो भगवान सारे जीवों का पालन करते हैं, जो पशु हैं, जैसे एक आचार्य थे जिनका नाम था श्रीधर स्वामी, जिन्होंने भागवतम के ऊपर पहली टीका लिखी। वो श्रीधर स्वामी जब सोच रहे थे अपने घर का त्याग करने का, तो उन्होंने देखा कैसे त्याग करूं, मेरे ऊपर तो सारे सब मेरे ऊपर ही आश्रित है, मेरे बिना ये जीवित नहीं रहेंगे। हमें क्या लगता है, मेरे बिना मेरे परिवार वाले या देश वाले जीवित नहीं रहेंगे, मेरे ऊपर निर्भर है। लेकिन हम भूल जाते हैं सबका पालन करने वाले कौन है, कृष्ण है। इसलिए कृष्ण कहते हैं मैं भरता हूं, मैं सबका पालन करने वाला हूं, लेकिन हम सब कृष्ण का रोल अदा करना चाहते हैं। तो वो जो आचार्य थे जब ये सोच ही रहे थे तो अचानक उन्होंने छत पर एक छिपकली देखी, छिपकली देखी तो वो छिपकली ने छोटे से बच्चे को जन्म दिया, वो उसका जो बच्चा है नीचे गिरा, वो अपने माँ से क्या था, अलग था। और नीचे गिरते ही उन्होंने देखा कि एक छोटा सा कीड़ा वह घूम रहा था, उस बच्चे ने अपनी जीवा बाहर ली, उस कीड़े को खाके कंटिन्यू। वो सब उसने देखा कि भगवान ये छोटी सी चिपकली जो माँ से भी अलग हो गई उसके लिए भी रक्षा की हुई है। इसी कारण से कभी कभी रुक्मिणी देवी कहती है आप सबका पालन पोषण करते हैं, देखती हूँ मैं। तो रुक्मिणी एक बार भगवान को कहती है द्वारका में, भगवान आप तो सबका पालन पोषण करते हैं संसार में, हाँ सारे जगत का। कृष्ण कहते हाँ। हाथी कितना खाता है, कई क्विंटल्स खाता है कि नहीं? वो ऑफिस में जाता है क्या? हाँ, कुछ नहीं करना होता, आराम से खाना है। सबसे अधिक दुखी जीव कोई है तो मनुष्य है। हाँ, ये पशु को हमें खाने रहने इन सब चीजों के लिए इतनी कड़ी मेहनत करनी पड़ती है, इतना टेंशन लेना पड़ता है, पशुओं को कुछ नहीं। हाँ, प्रभुपाद कहते चिड़िया इजीली उसको छोटे से दो तीन दाने मिले खाके संतुष्ट हो जाती है, लेकिन मनुष्य को कोई बोरी दिखाई दे, समझ गए होंगे आप, उसको जो आवश्यक है उतना नहीं लेगा, वो लेगा ही लेगा, बोरी भी उठा के ले जाएगा, इसी कारण से दुखी है। तो रुक्मिणी देवी ने कहा कि आप सबका पालन पोषण करते हैं तो मैं देखूंगी कैसे करते हैं। तो रुक्मिणी देवी ने क्या किया, एक चींटी को, भगवान पूरे दिन में इधर उधर सेवा में व्यस्त थे, शाम को जब द्वारका में रुक्मिणी के महल में कृष्ण आए तो कृष्ण को पूछते कि आपने सबका पालन पोषण किया, सब लोग भूखे तो नहीं आज, कोई एक भी जीव भूखा तो नहीं है? कृष्ण कहते नहीं नहीं असंभव है। फिर रुक्मिणी ने क्या किया था, एक छोटा सा डिब्बी लिया था, उसके अंदर चींटी को डाल दिया था और उसको पैक करके रखा था। उनको लगा कि अभी कृष्ण को मैं सिखाऊंगी कि एक जीव क्या रह गया आज, भूखा रह गया है। तो रुक्मिणी देवी कहती है नहीं नहीं याद करिए ठीक से, एक जीव भूखा है। कृष्ण कहते असंभव है। तो रुक्मिणी देवी वो अपना डिब्बी छोटा सा लेके आती है उनके सामने, खोल के दिखाती है, मैंने उस डिब्बी में किसको पैक करके रखा है, चींटी को। तो खोलती है तो क्या देखती है, केवल चींटी नहीं थी, चींटी थी लेकिन उसके साथ उसको खाने के लिए चावल का छोटा सा दाना भी था। तो वाचंबित हो जाती है। तो कृष्ण कहते हैं तुमने जब वो चींटी को पैक कर रही थी ना, तो तुम माथे में जब तिलक और वो थोड़ा सा चावल ये करती हो तो उसमें से एक दाना क्या किया मैंने, गिरा दिया उस चींटी के लिए, जिससे वो अपना जो भोजन है वो कंटिन्यू कर पाए। तो भगवान सबके जीवन की रक्षा करते हैं और भोजन आदि की व्यवस्था करते हैं। इसी कारण से चाणक्य पंडित कहते हैं कि मुझे चिंता नहीं है मेरे जीवन में। वो कहते हैं कि जब माँ नए नए बच्चे को जन्म देती है, गर्भवती स्त्री जब बच्चे को जन्म देती है तो बच्चा जन्म लेने से पहले है उसके स्तनों में दूध नहीं होता, लेकिन जैसे बालक जन्म लेता है एक मिनट के बाद स्तनों में क्या आ जाता है, दूध आ जाता है। वो कहते किसने व्यवस्था की है, वो बच्चा जन्म लिया उसके लिए भोजन किसने अरेंज किया, कृष्ण ने। हाँ, तो इस प्रकार से वो कहते हैं कृष्ण इतने कृपालु दयालु है, वो नए नए जन्म लिए हुए बालक की व्यवस्था कर सकते हैं, तो मैं क्यों चिंता करूं इस रोटी कपड़ा मकान के लिए। मैं किस चीज के लिए चिंतित हो, एक ही चीज के लिए, हाँ कृष्ण का चिंतन मुझसे कैसे हो अधिक से अधिक, इसके लिए मैं क्या हो, चिंतित हो। इसलिए वो कहते हैं कि मैंने कला सीख ली है, हरे विश्वंबर गीयते, जो हरि है कृष्ण है उनका गुणगान में नित्य रूप से करूंगा, ये जो कला है वो मैंने सीख ली है। तो इस प्रकार से हमें अपने जीवन में किसी चीज की चिंता करनी चाहिए तो वो इसी चीज के लिए चिंतित होना चाहिए कि मुझसे भगवान की भक्ति नहीं हो रही है, मुझसे भगवान का चिंतन नहीं हो रहा है, मुझसे भगवान का स्मरण नहीं हो रहा है। हाँ, ये हमारी चिंता होनी चाहिए। जब हम इस एक चीज पर कार्य करते गंभीरता से तो भगवान हमारी पूरी जिम्मेदारी उठाते हैं। इसलिए कृष्ण गीता में कहते हैं अनन्या चिंतयन्तो माम ये जना परियुपासते तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेम वाहम्यहम्। भगवान कहते हैं कि कोई व्यक्ति अनन्य चिंतयन्तो माम, अनन्य भावना से मेरा चिंतन करता है, तो अर्जुन कहे कि फिर क्या करते हो भगवान आप? तो भगवान कहते मैं क्या करता हूं सुनना है आपको? भगवान कहते हैं योग क्षेम वाहम्यहम्, मैं उस व्यक्ति के लिए जो उसकी आवश्यकताएं हैं उसकी मैं खुद पूर्ति करता हूं। भगवान कहते हैं ऐसे नहीं कि मैं किसी को भेजता हूं, मैं क्या करता हूं स्वयं उस व्यक्ति की आवश्यकताएं पूर्ति करता हूं और उसके पास जो चीजें हैं उसकी भी मैं रक्षा करता हूं। ये भगवान का वचन है गीता में। इसलिए तो जगन्नाथपुरी में एक भक्त था, हम ब्राह्मण, वो रोज क्या करता था? भगवत गीता पढ़ता था। क्या पढ़ता था? भगवत गीता ही पढ़ता रहता था पूरे दिन। अभी पूरे दिन घर में भगवत गीता पढ़े पति तो पता चलेगा उसे, हाँ पत्नी क्या करेगी, रहने देगी उसको घर में? हाँ नहीं, उसके पीछे लग जाएगी हाथ धोके। वैसे ही जगन्नाथपुरी में वो पंडा था, पूजा ब्राह्मण, वो रोज गीता ही पढ़ता रहता था पूरे दिन और कभी कभी भिक्षा मांगने जाता था। तो पत्नी ने कहा ये क्या कर रहे हो? वो कहता है कि हाँ कृष्ण ने बोला है। क्या बोला है कृष्ण ने? योग क्षेम वाहम्यहम्, वो सारी रक्षा करेंगे और आवश्यकता की वस्तुएं भी दे देंगे। उसको इतना फेथ था। क्या था? फेथ। तो हमारे साथ क्यों नहीं होता? क्योंकि हमारे पास भगवत गीता के इन वचनों में श्रद्धा नहीं है। श्रद्धा शब्दे कैले सदृढ़ निश्चय, कृष्ण भक्ति कैले सर्व कर्म कृता है। श्रद्धा या दृढ़ विश्वास क्या है? मैं कृष्ण की भक्ति करूंगा ना, मुझे फिर कुछ और करने की आवश्यकता नहीं है। ऐसा दृढ़ विश्वास जैसे श्रील प्रभुपाद को था। प्रभुपाद 70 साल की आयु में 40 रुपए जेब में इतना विश्वास कृष्ण में, कृष्ण के नामों में, कि वो कहां चल पड़े? अमेरिका चल पड़े। कौन मेरी रक्षा करेगा? कृष्ण मेरी रक्षा करेंगे। हाँ, ये विश्वास, ये कन्विक्शन चाहिए, तभी वास्तव में व्यक्ति के साथ भगवान आदान प्रदान करते हैं। लेकिन भगवान उसके लिए याचना करते हैं कि मेरा जो चिंतन है वो अनन्य भावना से चाहिए। हम भगवान की सेवा करते हैं तो कुछ ना कुछ मेवा की इच्छा रखते हैं। भगवान बहुत दिनों से मंदिर आ रहे, देखो एक भी हफ्ता मैंने मिस नहीं किया। हाँ, मेरी ये जो आंतरिक इच्छा है उसकी पूर्ति हो जानी चाहिए। तो हम सेवा कर रहे हैं, नाम जप कर रहे हैं, गीता भी पढ़ रहे हैं, प्रवचन भी सुन रहे हैं, लेकिन उसके पीछे हमारा क्या है? हेतु है। जब तक हम हेतु रख के कार्य करेंगे भक्तिमय, तब तक कृष्ण हमसे हमेशा दूर ही रहेंगे। कृष्ण उन लोगों के क्लोज हो जाते, नजदीक जाते हैं जो किसी प्रकार का भौतिक हेतु नहीं रखते। इसलिए तो पांडवों का जीवन हम देखते हैं। पांडवों के पास, पांडव चाहे वनवास में भी थे, कई प्रकार की विपदाएं में भी थे, लेकिन कृष्ण क्या थे? सदैव उनके साथ थे। क्यों? क्योंकि पांडव कोई और भौतिक इच्छा नहीं रख रहे थे कृष्ण से। अर्जुन को जब युधिष्ठिर महाराज ने कहा कि अभी युद्ध होने वाला है द्वारका में जाओ, और यहां से कौरवों से दुर्योधन भी गया, तो दुर्योधन ने किसकी डिमांड की? भगवान आप नहीं चाहिए मुझे, सैनिक चाहिए, धन चाहिए। लेकिन अर्जुन गए, अर्जुन ने कहा भगवान मुझे कुछ और नहीं चाहिए, मुझे चाहिए तो चाहिए कौन? आप चाहिए। तो इस प्रकार से पांडवों का जीवन है जहां किसी भी प्रकार का हेतु नहीं है, किसी भी प्रकार की ऐसी भावना नहीं है बदले में कुछ मुझे चाहिए। जब ये स्वार्थमय भावना से प्रेरित होकर हम भगवत सेवा या भक्ति करते हैं तो करोड़ों जन्म भी हम लगाए हैं तो भी भगवान हमारे जीवन में प्राप्त होना असंभव है। इसलिए वो अनन्य भावना हमें विकसित करनी चाहिए, तभी भगवान हमारे लिए नजदीक हो सकते हैं या भगवान के हम नजदीक जा सकते हैं। इसलिए वो जो जगन्नाथपुरी में जो ब्राह्मण गीता पढ़ रहा था अनन्य भावना से, उसके पत्नी को बड़ा गुस्सा आ गया। उसने एक दिन देखा क्या पढ़ता रहता है, गीता खोले और उसमें ये श्लोक निकल आया। कौन सा? योग क्षेम वहाम्यहम्। वो एलआईसी वालों ने लिखा है ना, एलआईसी वालों ने कहां से चुराया है? कृष्ण के शब्द चुराए हैं और वो अपने बनाकर लोगों को बेवकूफ बना रहे हैं कि हम आपकी रक्षा करेंगे। मृत्यु से वो रक्षा करने वाले नहीं है। धन भी वो व्यक्ति के नाम पर मंथली वो भरता रहता है, उसको तो यूज है ही नहीं। कौन यूज करता है बाद में? पत्नी बच्चे और सारे रिश्तेदार। तो काहे का योगक्षेम और काहे का वहां में हम। लेकिन यहां कृष्ण कहते हैं मैं, कृष्ण प्रॉमिस देते हैं। तो पत्नी ने जब भगवत गीता खोली खोली तो वही श्लोक निकला 9वें अध्याय का। हाँ, जब ये श्लोक निकला तो उस श्लोक में जब भगवान ने ये बोला ही है, हाँ आप जाके पढ़ सकते हैं 9वें अध्याय का 22वां श्लोक। जब उस पत्नी ने पढ़ा उसको गुस्सा आया, ये कैसे संभव हो सकता है। हाँ, तो उसने उसके नीचे अंडरलाइन कर दे लाल पेन से कि ये ठीक उचित नहीं है, ये गलत है। तो वैसे उस व्यक्ति ने किया था, पत्नी ने तो नहीं, लेकिन उस ब्राह्मण ने किया था, उसको फेथ नहीं था। हाँ, तो वो फिर पत्नी ने जब कहा तो फिर बहुत फोर्सफुली वो चला गया बाहर भिक्षा मांगने। भिक्षा मांगने गया तो भगवान को दया आई। भगवान ने कहा मैंने जो गीता में वचन दिया है वो झूठ नहीं हो सकते। तो भगवान जगन्नाथ और बलराम, कृष्ण और बलराम, दो बालक अचानक उसके घर के दरवाजे में आकर जोर जोर से दरवाजा पीटते हैं और वो चिल्लाते हैं हे माँ दरवाजा खोलो। तो वो पत्नी ने जब दरवाजा खोला देखा दो छोटे से बच्चे हैं, उनके ऊपर पूरा बोरी भरा हुआ सामान है दोनों के कंधे पर। और वो कहते किसने भेजा आपको? कहते आपके प्रभु जी ने भेजा है और हम जाने रहे थे, देखो मार मार के हमारा मुंह लाल कर दिया है। हाँ, तो वो सारा सामान रखते और वो चले जाते। अभी ब्राह्मण कुछ भी नहीं मिला ब्राह्मण को उस दिन भिक्षा। उसने जब खाली हाथ घर में जाऊंगा तो पत्नी मुझे घर में लेगी नहीं, फिर भी पूरा सीना तान के थोड़ा करेज लेकर पहुंच गया। तो पत्नी ने कहा आपको कुछ दया वगैरह है कि नहीं? दो बच्चों को अपने घर में भेजा था, हाँ उनको इतना मारा पीटा, उनके मुंह लाल हो गए हैं। हाँ, तो देखा कि मैंने तो किसी बच्चों को भेजा नहीं, लेकिन घर में तो सारा किराना का सामान दो दो बोरी आके पड़ा है। तो तुरंत भागता है अपने रूम में, जहाँ क्या रखा था उसने? भगवत गीता। और उसके ऊपर देखा कि वहां उसने अंडरलाइन किया था रेड पेन से, जिसके कारण भगवान के मुंह में क्या था वो? एक प्रकार का तमाचा था। हाँ, तो इस प्रकार से भगवान हमसे अपेक्षा करते हैं। क्या अपेक्षा करते हैं? बारंबार भगवान भगवत गीता में कहते हैं मन मना भव मन भक्तो मध्याजी मान नमस्करो कि हे अर्जुन मेरा भक्त बनो। भगवान कुछ और नहीं चाहते हमसे, हमसे चाहते भक्त बनो। लेकिन कैसा भक्त बनो? तो आगे इस अध्याय के श्लोक में कहते हैं अनन्या चिंतयन्तो मां, मेरा भक्त बनो लेकिन अनन्य भावना से मेरी भक्ति करो, मेरा चिंतन करो। तो जब हम अनन्य भाव रखते भगवान के प्रति तो भगवान हमारे ऊपर कृपा करने लगते हैं, भगवान अपने दया का प्रदर्शन करने लगते हैं। और भगवान को यही भावना सर्वाधिक प्रिय है। इसलिए तो जब प्रहलाद महाराज के लिए नरसिम्हदेव प्रकट हुए तो नरसिम्हदेव ने कहा प्रहलाद तुम्हारे लिए मैं प्रकट हुआ हूं खंभे से, कुछ मांगना है तो अभी मांगो, क्या दूं मैं तुम्हारे लिए? प्रहलाद कहते हैं मैं व्यापारी नहीं हूं। जो व्यापारी होता है वो हमेशा बिजनेस माइंडेड, वो हमेशा कुछ लेन देन की बातें करता है, वो कुछ करता है तो कुछ चाहता है। प्रहलाद ने कहा मैं व्यापारी नहीं हूं, हाँ मुझे आपसे कुछ नहीं चाहिए। फिर भी भगवान बहुत पीछे लगते हैं, कुछ मांगो प्रहलाद। तो वो कहते भगवान कुछ देना ही चाहते ना, मेरे हृदय में ये संसार को भोग करने की जो कामना है उसको क्या करो जड़ से मिटा दो बस। तो हमें भी भगवान से कुछ याचना करनी है तो यही है, इस संसार में हम ये भौतिक भोग करने की भावना को लेकर बैठे हुए हैं, भौतिक भोग में आनंद ढूंढ रहे हैं, ये भोग करने की भावना को भगवान को निवेदन करना चाहिए, क्या करो इसको मूल से जड़ से उसको नष्ट कर दो, क्योंकि यही हमारे दुखों का कारण है। इस संसार में भौतिक भोग करने की जो भावना है यही हमारे दुखों का कारण है और कोई कारण नहीं है। यदि भौतिक भोग करने की इच्छा निकल जाए हमारे हृदय से तो फिर हम सुखी हो जाएंगे, फिर हम भौतिक जगत के दुख से ग्रसित नहीं होंगे, त्रस्त नहीं होंगे। और भगवान ने कहा ठीक है वो भी करूंगा, और कुछ मांगो। प्रहलाद ने क्या मांगा होगा? प्रहलाद कहते देखो मेरे जो पिता हैं उन्होंने आपको बहुत कष्ट दिया है, बहुत आसुरी हैं, उनके ऊपर भी आप कृपा करो। क्या मांगा उन्होंने वहां? क्योंकि जो भक्त होता है उसका हृदय सबके प्रति समान होता है, इसलिए युधिष्ठिर महाराज को अजात शत्रु कहते हैं। भक्त किसी से ईर्ष्या और द्वेष नहीं रखता और कोई उसका शत्रु नहीं होता है, शत्रु और मित्र उसके लिए समान है। कोई उससे शत्रुता रख सकता है लेकिन वो अपना शत्रु किसी को समझता नहीं है। बल्कि हिरण्यकशिपु ने प्रहलाद को इतने कष्ट दिए, इतना मारा पीटा सब कुछ किया, लेकिन अपने जो पिता इतने दुष्ट थे उनके प्रति थोड़ी भी द्वेष की भावना उनके हृदय में नहीं थी, उनके लिए भी कल्याण की इच्छा वो कर रहे थे। उन्होंने कहा उनका उद्धार करो, तो भगवान कहते अरे प्रहलाद उनके ऊपर तो पहले कृपा कर दी है मैंने, क्यों? क्योंकि तुम्हारे जैसा पुत्र महान भक्त जब बनता है किसी परिवार में तो माँ के ओर के भी 14 पीढ़ियां और पिता की ओर के भी 14 जो पीढ़ियों के जो पूर्वज हैं उनका उद्धार हो जाता है। इस प्रकार से हम देख सकते हैं कि हमें भगवान की भक्ति करनी है तो भगवान से कुछ मांगने की कुछ अपेक्षा न रखें। एक ही अपेक्षा रखें कि भगवान मैं बस आपकी सेवा करना चाहता हूं। यही तो हनुमान की विशेषता है। हनुमान क्यों भगवान राम के साथ पूजनीय है? देखो भगवान राम की हम पूजा करते हैं लेकिन उनके साथ कौन हमेशा बैठे हैं? इतना बड़ा स्थान भगवान राम ने हनुमान को दिया है कि सारा जगत उनकी पूजा कर रहा है। क्यों? क्योंकि हनुमान के हृदय में भगवान के राम की सेवा करने के अलावा दूसरी कोई अपेक्षा नहीं थी। इसी कारण से जब अयोध्या में जब ये लंका से वापस आए और सबको कुछ ना कुछ गिफ्ट्स वितरण हो रहे थे, सारे बंदरों ने इतनी बड़ी बड़ी सेवा की थी तो सबको प्राइज दिया जा रहा था सीता देवी के हाथ में, सीता देवी के हाथ से, तो सारे बंदर बड़े कूद कूद के ले रहे थे अपना सामान। जब हनुमान का बारी आया तो भगवान राम भी उठ गए स्टेज में, अपने आसन से उठे, सीता देवी भी उठी और देने के लिए सोचा। हनुमान के बारे में भगवान राम सोचने लगे, हनुमान की ऐसी सेवा थी, भगवान राम ने सोचा क्या दे सकता हूं मैं इसके बदले। तो भगवान राम ने अपनी आंखें बंद कर ली, आंखें बंद करके भगवान राम सोचने लगे सारे 14 लोगों के 14 जो लोक है, स्वर्गलोक, महरलोक, जनलोक, तपलोक, सत्यलोक, नीचे के पाताल, वितल, सुतल लोक, सारे ये जो 14 भुवन है इनमें क्या श्रेष्ठ वस्तु हो सकती है जो मैं इसको गिफ्ट के रूप में दे सकता हनुमान को। वो सोचने लगे हनुमान, भगवान राम आग बंद करके तो उनको कुछ भी नहीं आ रहा था वस्तु ऐसी कि जो धूम है। तो भगवान राम रोने लगे, क्या करने लगे? रो पड़े, उनकी आंखों से आंसू बहने लगे और उन्होंने कहा हनुमान आपकी जो सेवा है, आपकी जो अनन्य भावना है, इसके बदले में देने के लिए मेरे पास कुछ भी नहीं है। ऐसे ही तो वृंदावन के गोपियों के साथ कृष्ण भी हर गए। उन्होंने कहा हे वृंदावन के निवासियों, आपकी जो सेवा की भावना है ये अतुलनीय है, इसके बदले में कुछ अपने आप को भी दे दूं ब्रजवासियों को तो भी मैं पूर्ति नहीं कर सकता। तो भगवान राम भी ऐसे ही सोच रहे थे। बल्कि हनुमान को सीता देवी ने क्या पकड़ाया था? एक हार पकड़ाया था मोतियों का, भगवान वो तो तोड़ तोड़ के वो देख रहे थे। सीता देवी ने पूछा, नीचे जो गैदरिंग में लोग बैठे थे ना स्टेज के नीचे, पूछ रहे थे हनुमान जी क्या कर रहे हो, तोड़ रहे हो इतना अमूल्य हार। उन्होंने कहा इसमें ना मैं किसको ढूंढ रहा हूं, राम को, राम नहीं है तो मुझे हार भी नहीं चाहिए। तो हनुमान जब भगवान राम की आंखों से आंसू आए तो भगवान राम कहते हैं कि हनुमान मेरे पास आपको देने के लिए कुछ है नहीं, लेकिन एक ही चीज है मैं वो दे सकता हूं, और वो क्या है, मेरा जो प्रेम भरा आलिंगन है। भगवान राम उनका आलिंगन करते हैं और वो कहते हैं इससे श्रेष्ठ वस्तु मेरे पास देने के लिए नहीं है। इसी कारण से हनुमान क्या है, सदैव इस संसार में पूजनीय है। तो इस प्रकार से हम सीख सकते हैं इस श्लोक से कि हमें वास्तव में भगवान की भक्ति करनी है या भक्त बनना है तो हमें इस अनन्य भावना का विकास करना होगा। और ये अनन्य भावना कैसे विकसित होती है, जब हम भक्तों के संगति में आते हैं और निरंतर भगवद गीता भागवतम आदि कृष्ण कथा को निरंतर सुनते रहते हैं भक्तों के मुख से, और दूसरा कृष्ण के नामों का गंभीरता से हम कीर्तन करते हैं, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, भगवान के नामों का हम गंभीरता से जप करते हैं, तो ये मलिन वासना है या भौतिक कामना है वो सारी क्या होती है, साफ हो जाती है। फिर हमारे अंदर अनन्य भावना विकसित होती है और फिर भगवान को हम अपनी ओर आकृष्ट करने के लिए आकृष्ट करने के लिए योग्य बन जाते हैं। तो इसी प्रकार से प्रभुपाद ने हमें ये शिक्षा दी है, प्रभुपाद ने ये योजना दी है, प्रभुपाद ने मंदिर दिए हैं जहाँ भक्त हैं और ग्रंथ हैं, हरि नाम है, प्रसाद है, ये सारी चीजें क्यों दी हैं कि हम भक्त बने, और कैसे भक्त बने, अनन्य भावना जिसके हृदय में हो। भगवान हमारे हृदय को देखते हैं, कौन से भाव से वो आ रहा है, कौन सी भावना से वो भक्ति कर रहा है। तो भावना का विकास करने के लिए भक्तों का संग आवश्यक है, भक्तों के संगति में आके सेवा और श्रवण कीर्तन करें और भगवान के नामों का गंभीरता से जप करें। ये दो चीजें इतनी पावरफुल है कि जिससे हम चाहे जितने मर्जी आसुर क्यों ना हो, वाल्मीकि भी बड़े आसुर थे कि नहीं, लेकिन नारद के संगति में हरि नाम का जप उन्होंने जब किया तो क्या बने, इतने बड़े ऋषि बने वाल्मीकि, हाँ, जिन्होंने रामायण की रचना की। तो वही है कि हम कितने गंभीर हैं भक्ति में जीवन में, हाँ। तो इसलिए भगवद गीता की यही शिक्षा है। भगवान इस श्लोक पर हमने ज्यादा चर्चा की नहीं, तो भगवान कहते हैं कि मुझमें अपने कर्म अर्पित करते हुए है, हाँ, और क्या करो, ये जो ममता का भाव है, मैं का जो भाव है उसको त्यागो और मेरे लिए कार्य करो, यही शिक्षा अर्जुन को भी देते हैं। हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हो गया है। भगवान ने मंदिर के अर्जुन के रूप में भगवत गीता दी है ना, हमेशा अर्जुन सामने है, इसलिए क्योंकि कलयुग के लोग मंदिरों में कम जाते हैं, मॉल में ज्यादा जाते हैं, इसलिए भगवान ने क्या दिया, आपके घर में मंदिर आ जाए भगवत गीता, तो आपके पास अर्जुन को घर घर पहुंचाइए, लोग यहाँ अर्जुन को देखने नहीं आएंगे, आपको क्या करना है, अभी आने वाले महीने में अर्जुन को सबके घर पहुंचाना है। इसी कारण से एक मिनट इनका क्वेश्चन है, तो इनका प्रश्न है जो दो इच्छाएं हैं जीवन में, जीवित रहना है मुझे हमेशा और धन प्राप्ति की इच्छा है, तो इससे कैसे मुक्त हो, इससे मुक्त होने के लिए मैंने आखिरी में दो चीजें बताई, भक्तों का संग करें, भक्तों के संगति में आके कृष्ण कथा को सुने, कृष्ण की सेवा करें। ऐसे नहीं कि भक्तों के संग में आ गए और हम वही घर की राजनीति की इधर उधर की बातें करते रहते हैं। कहते मैं मंदिर होके आया, कहाँ होके आया, लेकिन घर की जो इधर उधर की जो गंदगी है वो सारे यहाँ आकर चर्चा करते रहते, कोई कृष्ण की चर्चा नहीं। तो भक्तों के संगति में आना मीन्स भगवान का गुणगान सुनना, भगवान की चर्चा करना, और दूसरा कृष्ण के नामों का गंभीरता से जप करना। हाँ, भगवान का नाम जब हम उच्चारण करते हैं उसको ध्यान पूर्वक सुनना। तो ये दो चीजों से भौतिक जो इच्छा है वो मुक्त हो सकते हैं हम उससे। तो हम इसलिए जीवित रहना चाहते हैं क्योंकि हमें भोग करने की भावना बड़ी तीव्र है। क्या है? बहुत तीव्र इस संसार को भोग करने की भावना है, जिसके कारण हम क्या यही रहना चाहते हैं इस संसार में। हम तो ये भोग करने की भावना से ही हमें मुक्त होना है। तो है दो भावना है, एक है भोग भावना और दूसरी है सेवा भावना, है ना, भोग भाव सेवा भाव। तो जब हम गुरु की शरण ग्रहण करते हैं तो गुरु मीन्स क्या, गुरु का क्या मेन बिजनेस क्या है? गुरु का मेन बिजनेस है कि जो बद्ध जीव है या शिष्य है उसके अंदर जो ये भोग भावना है उसको बदलकर सेवा भावना में बदलना। भोग भावना को क्या करना, सेवा भावना में बदलना, ये गुरु का ड्यूटी है, उसके लिए वो एक्सपर्ट होना चाहिए, यही काम है। अरे भोग भावना के कारण ही हम इस संसार में क्या है रहना चाहते हैं, हमेशा रहना चाहते हैं। और वो भी कौन सा, थोड़ा सा सुख, चपल सुख, इतना नगण्य सुख है जिसके लिए हम क्या क्या नहीं करते संसार में। हाँ, लेकिन उससे अत्यधिक सुख है जब हमारा मन कृष्ण के चरणों में लगे, जिसकी कोई तुलना नहीं की जा सकती। भौतिक जगत के सांसारिक सुखों से भी क्या है, परे है। तीन प्रकार के रस है ना, तीन प्रकार के सुख है। हाँ, एक है भौतिक रस, एक है भौतिक रस उसको जड़ रस कहते हैं, दूसरा है स्वर्गीय रस, और तीसरा है आध्यात्मिक रस या वैकुंठ रस। एक है भौतिक रस, स्वर्गीय रस और वैकुंठ रस, तीन सुख है। तो भौतिक सुख इस संसार में हम ढूंढ ही रहे हैं, इसके पीछे भागो उसके पीछे भागो। और दूसरा क्या, व्यक्ति यहाँ परेशान होता कहते स्वर्ग में जाता हूँ, स्वर्ग में सुंदर अप्सराएं होती हैं, वहां सोमरस, यहाँ तो इसे चावल की बनी हुई शराब मिलती है, वहां क्या है सोमरस पीने को मिलता है, अमृत पीने को मिलता है। तो व्यक्ति स्वर्ग जाना चाहता है, उसके लिए कर्मकांड आदि करता है, लेकिन स्वर्ग में भी सुख नहीं है। तो लेकिन स्वर्ग से फिर ऊपर वाला रस कौन सा है सुख, वैकुंठ रस, वैकुंठ सुख। तो उसके लिए हमें कामना करनी चाहिए, उसी के लिए भगवान गीता देते हैं, भक्तों का संग देते हैं, सारी व्यवस्था उसी के लिए है। हमें वैकुंठ रस को भगवान चखाना चाहते हैं, और उसको एक बात हमने चख लिया तो भौतिक रस के लिए हम पागल नहीं होंगे, भौतिक सुख के लिए पागल नहीं होंगे। हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे।